विस्तार किया, ऐसी भी एक शैली रही है। तो हमने जो है समझ लो व्याख्या तो पहले लिख ली, उसके सूत्र बाद में बनाए। वेद ज्ञान के इसके आधार पर 40 सूत्र यानी 40 हेडिंग समझ लीजिए आप, 40 शीर्षकों के माध्यम से उसमें उसका विस्तार किया गया है। तो ये हमने यहाँ पर ये स्क्रिप्ट ऐसी बनाई है इसकी, और इसकी व्याख्या भी इसके साथ में, ये 40 सूत्र इसमें हैं पहले 2 पेज पर और बाद में 10 पेजों में इसकी व्याख्या इसमें लिखी गई है, उसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि ये हमारा अलग से ये जो सत्र है ये हमारे शेड्यूल प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन इस सत्र में मैं आपके साथ में एक चर्चा जो शेयर करना चाहता हूँ उसको मैंने एक नया नाम दिया है, और वो है भेद ज्ञान क्या, क्यों और कैसे। किसी को दिया तो नहीं है आपने? क्या बोला? भेद ज्ञान क्या, क्यों और कैसे। मैंने भेद ज्ञान क्या है इसकी चर्चा, भेद ज्ञान क्यों करना इसकी चर्चा, और फिर भेद ज्ञान कैसे करना उसकी चर्चा। भेद ज्ञान क्या है ये उसका वर्तमान है, भेद ज्ञान क्यों करना, क्यों में उसका भविष्य छिपा हुआ है। क्यों, क्या प्रयोजन है भेद ज्ञान क्यों करना, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को, माने इसके माध्यम से हम उसके भविष्य में उसका क्या फल प्राप्त होता है उसकी चर्चा क्यों के माध्यम से की जा सकती है, और कैसे माने ये उसके भूत उसका जो साधन क्या बनेगा, वो कैसे हम क्या करें कि भेद ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। तो माने उसके भूतकाल की चर्चा कैसे में, वर्तमान की चर्चा क्या में, और क्यों में भविष्यकाल की चर्चा, माने इसको कालात्मक भी ले सकते हैं और भावात्मक भी ले सकते हैं, और यदि कारण कार्य की यदि हम श्रृंखला में लगाएं तो भेद ज्ञान कैसे होगा ये कारण है, भेद ज्ञान कैसे होगा ये कारण है, उससे क्या कार्य की सिद्धि होगी, उससे क्या कार्य की सिद्धि होगी, भेद ज्ञान की विधि अप्लाई करेंगे तो उससे क्या सिद्ध होगा, उससे भेद ज्ञान सिद्ध होगा। तो ये भेद ज्ञान उसका वर्तमान है माने ये उसका कार्य है, लेकिन यदि इस भेद ज्ञान को भी हम कारण बनाएं तो इस भेद ज्ञान को करने से हमको क्या मिलेगा, इससे हमको क्या प्राप्त होगा, तो वो जो उसकी चर्चा जो है माने उसका कार्य, कारण जो है भेद ज्ञान कैसे ये कारण है, उसका कार्य भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान को यदि कारण कहें तो भेद ज्ञान का जो फल है वो भेद ज्ञान का कार्य कहा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो है भेद ज्ञान क्या है, भेद ज्ञान क्यों करना है और भेद ज्ञान को कैसे किया जा सकता है, समझ लो इसी के ये जो 40 सूत्र हैं, ये भेद ज्ञान क्या क्यों कैसे इसी को इसमें डिनोट कर रहे हैं, इसी को इसमें बता रहे हैं क्या है भेद ज्ञान। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपसे कहता हूँ कि 2 शब्द आते हैं, एक आता है भेद ज्ञान और एक आता है भेद विज्ञान। क्या चाहिए भाईचार? देखो मैंने इसमें भेद ज्ञान लिखा है, लेकिन यदि इस पर आप विचार करो तो भेद ज्ञान से भी स्पेशल कैटेगरी भेद विज्ञान की बनेगी। क्यों, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान, विज्ञानम जो विशेष ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। विशेष का एक अर्थ भेद भी होता है, विशेष करना माने अंतर बताओ, भेद बताओ क्या विशेषता है क्या अंतर है, विशेष का अर्थ भेद भी होता है। इसलिए आप विज्ञान कहो उसी का अर्थ भेद ज्ञान है, विज्ञान कहो उसी का अर्थ भेद ज्ञान है, लेकिन आचार्यों ने अधिकांश, ये तो हम भेद विज्ञान मूल में शब्द, असली शब्द तो भेद विज्ञान है, लेकिन हम लोग थोड़े संक्षिप्त प्रेमी है ना, थोड़ा संक्षेप में बात करना चाहते हैं, तो हमने भेद विज्ञान को में भी और संक्षेप कर दिया, तो उसको भेद ज्ञान कह देते हैं। भाव तो हमारा भी भेद विज्ञान का है, लेकिन उसको कहने में हम भेद ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत अलग है। आचार्यों के अमृतचंद्राचार्य को आप देखो तो भेद विज्ञान सह सिद्धा सिद्धा ये किल के चना अस्यैव भाव तो बद्धा बद्धा ये किल के चना। क्या शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, भेद विज्ञान सह सिद्धा। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से ही हुए हैं। सिद्धा ये किल के चना, जितने हुए हैं वो सब अच्छा, और जितने बंधे हैं वो क्यों बंधे हैं भाई साहब, सिद्ध जितने हुए हैं वो तो सब भेद ज्ञान से हुए, भेद विज्ञान से हुए, और जितने बंधे हैं संसार में घूम रहे हैं वो किस लिए घूम रहे हैं, तो अस्यैव अभाव तो बद्धा, इस भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही आज तक जितने बंधे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव के कारण बंधे। अस्यैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना, जितने भी बंधे हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव के कारण, और जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के कारण ही सिद्ध हुए हैं। इसलिए आचार्यों ने भेद विज्ञान कहा। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि भेद विज्ञान माने क्या हुआ, बोले विज्ञान माने भी भेद ज्ञान, और भेद विज्ञान माने क्या हो जाएगा फिर, भेद भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, विज्ञान माने भेद ज्ञान, तो भेद शब्द तो और दिया डबल डबल भेद ज्ञान। क्या बोला, भेद विज्ञान माने डबल भेद ज्ञान। डबल भेद ज्ञान क्या होता है, भेद भेद ज्ञान क्या होता है, मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूं कि भेद ज्ञान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक सामान्य भेद ज्ञान और एक विशेष भेद ज्ञान। क्या बोला, एक सामान्य भेद ज्ञान और एक विशेष भेद ज्ञान। तो जो सामान्य भेद ज्ञान है वो तो भेद ज्ञान है, और जो विशेष भेद ज्ञान है वो भेद विज्ञान है। सामान्य भेद ज्ञान में और विशेष भेद ज्ञान में क्या अंतर है, क्यों भाई नवीन भाई, आप में और रजनी भाई में कुछ अंतर है क्या, नहीं काफी। छत्तीसगढ़ का नहीं है ना। काफी अंतर है बोल रहे, नवीन भाई जो है वो रजनी भाई नहीं है, रजनी भाई वो नवीन भाई नहीं है, बोलो ये भेद ज्ञान है क्या नहीं। बोलो भेद ज्ञान है क्या नहीं, है क्यों नहीं है, फिर वो रजनी भाई नवीन भाई नहीं है, नवीन भाई रजनी भाई नहीं है, भेद ज्ञान तो है ना, वो उनका द्रव्य अलग है उनका द्रव्य अलग है, दोनों में अंतर है क्या, नहीं अंतर है, भेद है, लेकिन मैं इस भेद ज्ञान को सामान्य भेद ज्ञान कहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब भी इस बात को कहते हैं, उनकी कहने की ढंग थोड़ा अलग है, हम उनके चेले हैं इसलिए हमारा ढंग थोड़ा अलग है। अलग है माने क्या बोला, वो कहते हैं कि भेद इस भेद ज्ञान में कोई दम नहीं, काई दम न थी। इस भेद ज्ञान में कुछ दम नहीं है कि इनका उससे भेद है उनका उससे भेद है। बोलो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में अंतर है क्या, नहीं है क्या, नहीं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य नहीं है, उनमें भेद ज्ञान है क्या, नहीं भेद है क्या, नहीं भेद ज्ञान तो हम करेंगे लेकिन उनमें भेद है क्या, नहीं है भेद, लेकिन विशेष भेद है क्या, नहीं बोले उनमें भेद तो है, लेकिन उनको वो भेद ज्ञान तो कहा जा सकता है, लेकिन भेद विज्ञान नहीं कहा जा सकता, विशेष भेद ज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता बताओ, क्यों नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता बोले। हमारे डॉक्टर साहब इसका जवाब देते, क्यों नहीं कहा जा, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भेद ज्ञान करना क्या नहीं करना। सुनो, यदि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में कदाचित आपका बुद्धि का सूक्ष्म कम हो और आप उनका भेद नहीं भी समझते हो तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा, नहीं हो तो मेरे से ले जाना। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में यदि अपने आपने अंतर नहीं जाना, उनका भेद ज्ञान नहीं किया, तो आपको सम्यक दर्शन में कोई बाधा है नहीं है बाधा। सुनना, घबराना नहीं है बाधा, हो जाएगा सम्यक दर्शन। फिर आप तो कह रहे थे भेद ज्ञान हो जाए तो भेद ज्ञान से तो मोक्ष हो जाता है, भेद विज्ञान का है सिद्धा, और यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कहाँ अटक गई गाड़ी रजनी भाई बताओ, कहाँ अटक गई। अटक यहाँ गई कि दो द्रव्यों में भेद करने का नाम भेद ज्ञान नहीं है। सुनो क्या बोल रहे हो, दो द्रव्यों में भेद ज्ञान करने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान तो कहो कह सकते हो, भेद विज्ञान नहीं है। फिर भेद विज्ञान किसका नाम है, स्व और पर के भेद ज्ञान का नाम भेद विज्ञान। दो द्रव्यों के नवीन भाई और रजनी भाई में क्या प्रॉब्लम था, नवीन भाई और रजनी भाई में यदि नवीन भाई विचार करें कि रजनी भाई भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, ये भेद विज्ञान हो सकता है। रजनी भाई विचार करें कि ये नवीन भाई अलग हैं मैं अलग हूँ, ये भेद विज्ञान हो सकता है। लेकिन पंडित राकेश कुमार ये विचार करे कि नवीन भाई और रजनी भाई अलग अलग है, इसमें इसको क्या फायदा, इसको क्या फायदा। मैंने तुम दुनिया की बात कर रहे हो, अपनी बात नहीं करते हो, इसलिए भेद विज्ञान में दो पार्टी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बोले होना चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त है। क्या शर्त है, कि उस दो पार्टियों में एक पार्टी अपनी होनी चाहिए। इसका नाम है स्वपर भेद विज्ञान, एक पार्टी अपनी होना चाहिए, नहीं तो तुमने उनको उनसे अंतर कर दिया, तुमने उनको उनसे भेद कर दिया, इसमें कोई दम नहीं है। हम तो उसमें अभेद भी करेंगे, क्या बोल रहे, जब हम भेद ज्ञान करेंगे ना, भेद ज्ञान, हम ये जो भेद विज्ञान बोल रहा हूँ मैं आपको, जिसको हम भेद विज्ञान कह रहे हैं, जब हम भेद विज्ञान करेंगे तो ये रजनी भाई और नवीन भाई दोनों के अंतर को करेंगे क्या मिटाएंगे, दोनों के अंतर को समाप्त कर देंगे और भेद ज्ञान असली भेद विज्ञान होगा। कैसे मिटा देंगे बोलो, कैसे मिटाएंगे श्री बाली। मेरे लिए रजनी भाई भी पर हैं और मेरे लिए नवीन भाई भी पर हैं, इसलिए दोनों को मैं पर के खाते में डालता हूँ। तो ये पर का अभेद ज्ञान किया कि नहीं किया, पर अभेद पर का अभेद कर दिया, ये मेरे लिए ये भी पर हैं और वो भी पर हैं, पर मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं स्व हूँ और ये मेरे लिए पर हैं। सारी दुनिया एक हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं होना चाहिए, मुझे अपने को अलग करना है, इसका नाम भेद विज्ञान, इसका नाम भेद विज्ञान है। इसलिए जो विशेष भेद ज्ञान है, स्व, आप देखो आचार्यों ने जहां जहां भेद ज्ञान की चर्चा की है, जहां जहां भेद ज्ञान की चर्चा की है, उन्होंने स्व पर भेद विज्ञान की ही चर्चा की है। ये दो द्रव्यों की भिन्नता की बात करना और दो पर को भिन्न करना, इसका नाम हिंदुज्ञान है ही। तुमको इससे क्या लाभ है? देखो, वेद ज्ञान यदि आप करते हो, इसका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्यों करते हो बताओ? क्या है वेद ज्ञान? इसमें स्व और पर में भेद किया, और स्व और पर का जो भेद किया है, इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। दो द्रव्यों के बीच में दो द्रव्यों को स्वपर से भेद विज्ञान करना, दो द्रव्यों का ये भेद विज्ञान अलग है। और मुख्य रूप से जो प्रवचन सार है, ये दो द्रव्यों के भेद ज्ञान की चर्चा करता है। स्वपर दो द्रव्यों के भेद ज्ञान की चर्चा करता है। और समय सार का भेद विज्ञान क्या है बताओ? समय सार का भेद विज्ञान क्या है? समय सार का भेद विज्ञान जो है, वो दो द्रव्यों की भिन्नता, स्वपर स्वपर दो द्रव्यों की भिन्नता की ही बात नहीं करता है। किसकी बात करता है? वो नौ तत्वों के भेद ज्ञान की चर्चा करता है। नौ तत्वों के भेद ज्ञान की। नौ तत्वों में क्या है कि नौ तत्वों में एक जीव में जुदा हूँ, अन्य हूँ, और मेरे अलावा बाकी के सब नौ तत्व आठ नहीं, मेरे को छोड़ करके आठ नहीं बचे, नौ तत्व हैं, उसमें एक मैं हूँ। बोलो कितने बचे बेटा? आठ बचे। ये गणित कुछ अलग है बेटा, इसमें 9-1=9। क्या बोल रहे हो? 9-1=9। क्यों? क्योंकि उसके एक जीव में अलग हुआ ना, तो नौ तत्वों में जो जीव हैं, वो तो अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों को अलग किया और उनमें मैं अपने को अलग किया है, तो जीव को भी जीव से भिन्न किया है। क्या बात है, क्या बात है! जीव को भी जीव से अलग किया है। जीव को अजीव से अलग तो किया ही है, आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप इससे अलग तो किया ही है, लेकिन जीव को ये जीव जीव में क्या अंतर है? जीव जीव में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। स्व ये जो जीव है, ये है तो जीव, लेकिन पर जीव है, और मैं भी इनके ही समान जीव हूँ, लेकिन इनमें और मेरे में बहुत अंतर है। काय का अंतर है? मैं स्व जीव हूँ और ये सब बाकी के पर जीव है। हाँ, 9-1=8 भी होता है। सही बोल रहा था। कैसे? ये जो पर जीव है ना, ये काय में जाएंगे। ये जो पर जीव है, ये काय में जाएंगे। यदि इनको अजीव में डाल दो, घबराना नहीं, मैं तुमको डालूंगा अजीव में, तुम बदला ले देना। कैसे? कैसे? मैं तुमको डालूंगा, तुम मेरे को डाल देना कचरे के डब्बे में। अजीव माने क्या है? अजीव माने कचरे का डब्बा। एक बात बताओ, कचरा माने क्या होगा? डस्ट। कचरा माने क्या होता है? डस्ट, डस्ट, डस्ट। और वो डस्ट काहे में डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। और कचरा माने क्या होता है? कचरा, हाँ ये बोला, कचरा माने बेकार की चीज, बिन काम का। तो मेरे लिए आप कितने काम के हो बता? बोलो, कचरे के डब्बे में नहीं डालू तो काय में डालू? मेरे लिए आप रंच मात्र काम के नहीं हो, इतने से भी काम के नहीं हो, इसलिए सब कचरा है। अरे, नौ तत्व कचरा है। नौ तत्व, इसलिए तो नौ तत्व गतत्व भी नौ तत्वों से भिन्न ज्योति उसे बतलाती। बोलो, नौ तत्वों से भिन्न करना है ना? क्यों भिन्न करना है? मेरे कोई काम के नहीं है नौ तत्व, मेरे कोई काम के नहीं है नौ तत्व। नियम सार ने तो कमाल कर दिया था। क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। वो ये कहते हैं, नियम सार कहता है कि यदि तुम द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प करते हो, यदि तुम द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प करते हो तो हे साधु, साधु की बात कर रहे हैं, हे साधु तुम अन्नवश हो। तुम द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते हो तो हे साधु तुम अन्यवश हो, तुम स्ववश नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो स्ववश साधु है, जो अपने में वश है, वशीभूत हुए साधु हैं, वो द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प नहीं करते। कौन सी गाथा है? नियमसार की, नियमसार की 145 नंबर की गाथा है। ये मैंने कोट किया बेटा। क्या नियमसार की 145 नंबर की गाथा कह रही है कि द्रव्य गुण पज्जयानम चित्तम जो पुनै सोवि अन्नवसो मोहंधयार वव गए समना कहयंती एरिसयम। सत्यासी सबसे लास्ट। क्या द्रव्य गुण पज्जयानम चित्तम जो कुणै, द्रव्य गुण पर्याय में जो अपने चित्त को लगाते हैं, द्रव्य गुण पज्जयानम चित्तम जो कुणै, जो द्रव्य गुण पर्याय में अपने चित्त को लगाते हैं, सोवी अन्नवसो वो सब अन्नवश हैं, अन्नवश हैं, अन्नवश। ये मेरी आवाज के कारण हो रहा है क्या? द्रव्य गुण पज्जयानम चित्तम जो पुनै सोवी अन्नवसो मोहंध यार वव गए। क्या कह रहे हैं? क्यों बोले साहब उनको आप अन्नवश क्यों कहते हो? द्रव्य गुण पर्याय में जो अपने चित्त को लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। द्रव्य गुण पर्याय में अपने चित्त को लगाओ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से अपने चित्त को हटाओ। क्या हमारे लिए तो ये बात भी शोभा देती है? कौन सी? स्त्री पुत्र परिवार से अपने चित्त को हटाओ। लेकिन ये नियमसार साधु को संबोधित कर रहा है उनसे ये कहे अच्छा लगेगा। बोलो साधु से कहो आप, हे मुनि तुम स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में अपने चित्त को मत लगाओ। अरे हमारी स्त्री तुमको कहाँ दिख गई? हमारे पुत्र तुमको कहाँ दिख गए जो तुम हमको ये उपदेश देते हो? बोलो कहाँ लगाते हैं वो मुनिराज चित्त, कहाँ लगाते हैं अपने चित्त को? तो बोलते हैं वो अपने चित्त को लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? चलो चलो, वो अपने चित्त को कहाँ लगाते हैं? बोले वो अपने चित्त को लगाते हैं द्रव्य गुण पर्याय में। ओहो, और उससे क्या होता है? बोलो उससे हो, उससे निर्विकल्प हो जाते हैं साधु, आत्मानुभूति शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाती है उनको। द्रव्य गुण पर्याय में चित्त लगाते हैं तो बोलते हैं नहीं होती है तो तुम इस द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प में क्यों उलझते हो? क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारे को निर्विकल्पता की प्राप्ति तो हुई नहीं है। और वो मुनिराज को ये कहा जा रहा है कि मोहंध यार वव गए समना कहयंती एरिसयम। क्या बोल रहे? मोहंध यार वव गए, तुम द्रव्य गुण पर्याय में अपने चित्त को लगाते हो, तुम मोही हो, तुम मोही हो, तुमको विकल्प में अच्छा लगता है। क्या बोले? तुमको विकल्प में अच्छा लगता है, इसका अर्थ तुम मोही हो। हे श्रमण, जो मोह रूपी अंधकार से रहित हो गए हैं, वास्तव में तो वो ही श्रमण है। इसलिए तुम द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प में अपने चित्त को मत लगाओ। देखो इसकी टीका भी सुनाता हूँ आपको। जो द्रव्य गुण पर्यायों में उनके विकल्पों में मन लगाता है वह भी अन्यवश है। मोहांधकार रहित, मोहांधकार रहित श्रमण ऐसा कहते हैं। वो श्रमण है ना मोहांधकार से रहित,
वो ऐसा कहते हैं कि हे श्रमण, तुम द्रवगुण पर्याय में अपने विकल्प को लगाते हो, तुम मोही हो, मत लगाओ। क्या बात है, हम लगाएं कि नहीं लगाएं? बोलो, हम लगाएं कि नहीं लगाएं? क्या बात है, श्रमण को कह रहे हैं कि तुम द्रवगुण पर्याय में अपने चित्त को लगाओगे तो तुम मोही हो, और हमको मालूम क्या कह रहे हैं? हमको क्या कह रहे हैं? हमको कह रहे हैं कि तुम द्रवगुण पर्याय में अपने चित्त को नहीं लगाते हो, तुम मोही हो। क्या बोला? कैसे? पोपाबाई का राज नहीं है? पोपाबाई का माने उनको उनको घटित उनको तो कह रहे हो साहब, तुम द्रवगुण पर्याय में अपने चित्त को लगा रहे हो, तुम मोही हो, और हमसे कह रहे हो कि तुम द्रवगुण पर्याय में अपने चित्त को नहीं लगा रहे हो, तुम मोही हो। क्या फर्क है? क्या फर्क है? ये जो हम द्रवगुण पर्याय, देखो, यदि द्रवगुण पर्याय में अपने चित्त को नहीं लगाओगे, हम अपनी बात कर रहे हैं, यदि हम द्रवगुण पर्याय में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे तो इसका अस्ति और नास्ति दोनों से विचार करना। यदि तुम द्रवगुण पर्याय में अपने चित्त को नहीं लगाते हो तो तुम कहाँ लगाते हो? बोले, मैं स्त्री में लगाता हूँ, पुत्र में लगाता हूँ, कुटुंब में लगाता हूँ, धंधा में लगाता हूँ, व्यापार में लगाता हूँ, नोट गिनने में लगाता हूँ। बोलो, तो तुम वही है क्या? नहीं। और वो मुनिराज के ये सब तो है नहीं। अब उसके बाद भी यदि निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है वो मुनिराज को, तो क्यों? क्योंकि वो द्रवगुण पर्याय में अपने विकल्प को लगा रहे हैं, उससे विकल्प खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको मोही कहा। दोनों के मोह में अंतर है। हमारा जो मोह है द्रवगुण पर्याय में नहीं लगाने का जो मोह है, ये दर्शन मोह है। और वो मुनिराज जो द्रवगुण पर्याय से अपने को हटाते नहीं हैं, निर्विकल्प अनुभूति में नहीं जाते हैं, ये उनका चारित्र मोह है। दोनों में फर्क है। मोह मोह तो दोनों हैं, लेकिन हमारे लिए दर्शन मोह है, उनके लिए चारित्र मोह है। कारण क्या? कारण ये है, आचार्य कहते हैं कि यदि तुझे द्रवगुण पर्याय का ज्ञान नहीं होगा तो तुझे भेद ज्ञान नहीं होगा। द्रवगुण पर्याय का ज्ञान नहीं होगा तो तुझे भेद ज्ञान नहीं होगा, और तेरे को यदि भेद ज्ञान नहीं होगा तो तू मोह का नाश कैसे करेगा? मोह का नाश करने की विधि बताओ। मोह का नाश करने की विधि बताओ। रोशन सार कह रहा है कि जो जान दी अरे हंतम, ये दर्शन मोह के नाश की विधि की बात कर रहा हूँ। जो जान दी अरे हंतम केम 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 सब केम का बराबर है यहाँ पर। कैसे? कैसे के लिए केम चलता है। कैसे? कैसे? अरंत को जानना। अरंत को जानने से क्या होता है? मोहो खलु जादी तस् लयम, उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे? कैसे अरंत को जानने से मोह नाश को प्राप्त हो जाता है? अरे पूरी गाथा पढ़ो ना। दो पद तो तुमने गायब कर दिए, पहला बोल दिया और आखिरी बोल दिया। जो जान दी अनंतम मोह खलु जादी तस् लयम, अरे इसके बीच में भी कुछ है क्या? नहीं। क्या है इसके बीच में? जो जान दी अरे हंतम दवत्त गुणत्त पज्जया तेहिं, सो जान दी अपानम मोह खलु जादी। क्या? जो जान दी अरहंतम केम, कैसे? दवत्त गुणत पज्जयते ही, अरंत को जानना तो उनको द्रव्य से जानना, द्रव्यपने से जानना, गुणपने से जानना, पर्यायपने से जानना, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सो जान दी अपन, मुझे अपना ज्ञान हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा अपना ज्ञान? अनंत के द्रव्यगुण पर्याय जानने से अपना ज्ञान होता, अनंत के द्रव्यगुण पर्याय जानने से अनंत का ज्ञान होगा या अपना ज्ञान होगा? हाँ, अनंत को द्रव्यगुण पर्याय जानोगे, अनंत के द्रव्यगुण पर्याय जानोगे तो अनंत का ज्ञान होगा कि अपना ज्ञान होगा? देखो हमारे आचार्य थोड़ी शॉर्टकट में बात करते हैं, सूत्र शैली में बात करते हैं। अनंत को द्रव्यगुण पर्याय को जानोगे तो अनंत का ही ज्ञान होगा, लेकिन उससे आत्मा का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? वो अलग है, मैं अलग हूँ, उनको जानने से उनका ज्ञान होगा कि मेरा ज्ञान होगा? बोले नहीं, उनको जान लो तुमको तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। अरे ये क्या सूत्र है, ये क्या रहस्य है? बोले रहस्य ये है कि उनके द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय निश्चय से दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये पहली लाइन है टीका की, अनंत के द्रव्यगुण पर्याय और मेरे द्रव्यगुण पर्याय इन दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है, ये पहली लाइन है। इसलिए उनके द्रव्यगुण पर्याय को जानोगे तो अपने द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान हो जाएगा, और अपने द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? अपना ज्ञान हो जाएगा, और अपना ज्ञान होगा तो क्या होगा? मोह खलु जादि तस्य लयम्, उसका मोहनाश को प्राप्त हो जाएगा। क्या बात, कैसे हुआ भाई साहब, कैसे हुआ? ये अनंत को जानने से नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ? ये द्रव्य गुण पर्याय को जानने से हुआ। क्या, ये अनंत को जानने से नहीं हुआ है, ये द्रव्य गुण पर्याय को जानने से हुआ है, और उनके द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। नहीं है कोई अंतर? नहीं है, द्रव्य से अंतर तो नहीं है, कोई बात नहीं मान लिया। गुण से कोई अंतर है? बोले नहीं, कोई अंतर नहीं है मान लिया। पर्याय से अंतर है क्या? नहीं बोलो, पर्याय से अंतर है क्या? नहीं। सुनो, तुम पर्याय बुद्धि हो, सुनना सुनना, इसलिए तुमको पर्याय से अंतर दिखता है। क्या बोलता हूँ, तुम पर्याय बुद्धि हो इसलिए तुमको पर्याय से अंतर दिखता है, और यदि तुमको पर्याय बुद्धि नहीं रहेगी तो तुमको पर्याय में भी अंतर नहीं दिखेगा। कैसे कैसे होगा ये कमाल? पर्याय बुद्धि क्यों कह रहा हूं मैं? तुम सिर्फ वर्तमान पर्याय को देखते हो। द्रव्य में द्रव्य है त्रिकालवर्ती, तो त्रिकालवर्ती द्रव्य को देखते हो। द्रव्य है तो उसके गुण है, अनंतानंत गुण है, तो उनके त्रिकालवर्ती गुणों की वो त्रिकालवर्ती से देखते हो, त्रिकाल से देखते हो गुणों को। और पर्याय की बात आती है तो सिर्फ वर्तमान पर्याय से देखना, क्यों? वर्तमान पर्याय पर्याय है, भूतकाल की पर्याय पर्याय नहीं है, भविष्य काल की पर्याय पर्याय नहीं है। और यदि ये भूत भविष्य वर्तमान काल, भूत वर्तमान भविष्य काल की यदि त्रिकालवर्ती पर्यायों को रखो इधर, और मेरी आत्मा की त्रिकालवर्ती पर्यायों को रखो इधर, दोनों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को देखो, क्या अंतर दिखता है? क्या अंतर दिखता है? ये जो मेरी वर्तमान पर्याय है ना, मेरी वर्तमान पर्याय वो थोड़ी सी इधर है, थोड़ी सी इधर है, और उनकी वर्तमान पर्याय जो है वो थोड़ी सी इधर है, इतना अंतर है। यदि मेरी वर्तमान पर्याय को थोड़ी ऊपर कर दो, ऊपर कर दो माने भूत में ले जाओ थोड़ी, तो मेरी जो सिद्ध पर्याय है वो भी सामने आ जाएगी, और उनकी जो सिद्ध पर्याय अभी दिख रही है सामने वो भी सामने है, तो मेरी सिद्ध पर्याय और उनकी सिद्ध पर्याय, बोलो क्या अंतर है? अरे इतना ही तो अंतर है ना, भगवान के सामने बोलते हो और आपको ख्याल में नहीं आती, क्या बोलते हो भगवान के सामने? पर्याय से ही तो बात करते हो ना, कि भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका मम भविष्य वह जान।
बोलो ये पर्याय की समानता बताइए इस छंद में कि पर्याय का अंतर बताया, बताओ। ये छंद पढ़ो आप और इस छंद में ये बताओ कि इसमें पर्याय का अंतर बताया है भगवान और अपना या अंतर नहीं बताया है। देखो अंतर नहीं बताया, क्या बताया है? भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान। बोलो जैसी आपकी पर्याय वैसी मेरी पर्याय।
क्या? जैसा भूतकाल आपका है वैसे ही मेरा वर्तमान है, बस इतना ही अंतर है। और भूत वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, माने वो भविष्य मेरा भी है और जो मेरा वर्तमान है वो आपका भी भूतकाल है। ये भगवान महावीर, ये भगवान महावीर जंगल की खाक छानते थे, इतने दुष्ट परिणाम थे इनके। क्या बोल रहे हो? किनके? ये महावीर भगवान की ऐसे दुष्ट परिणाम थे। वो सिंह, उन्होंने हिरण को पकड़ा और ऐसा एक के दो कर दिए। अच्छे अच्छे काम है, ये अच्छे काम है। हे महावीर तुमको शोभते हैं, लेकिन भूतकाल में तुम भी मैं बोलता हूँ आपसे कि जो महावीर का भूतकाल ये वाला है उनसे हम अच्छे हैं कि नहीं? हम तो कम से कम पानी छान के पीते, वो तो खून अंशना पी जाते थे, हमने पानी छान के पीते, उनने तो खून भी अंशना पी लिया था। अंतर करना है तो करो अंतर, वो अच्छे थे क्या हम अच्छे हैं? बोलो पर्याय से, यदि इनका ये भूत देखते हो तो हम अच्छे हैं क्या नहीं? और यदि उनका वर्तमान और हमारा वर्तमान देखते हैं तो हम ये कह देते हैं। ये बहुत औपचारिक बात है, ये पर्याय दृष्टि वाली बात है। यदि इसको गौण कर दो, इसको गौण कर दो, ये भूत और वर्तमान, वर्तमान और भविष्य, ये काल को गौण कर दो तो जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो। भूत और वर्तमान को गौण करना, वर्तमान और भविष्य को गौण करना, तो बस वही हम और आप समान। पर्याय से भी समानता है और बहुत सारी विवक्षाएं हैं, बहुत सारी विवक्षाएं, जिन विवक्षाओं से ये सिद्ध होता है किन विवक्षाओं से सिद्ध होता है? कि अरंत में और मेरे में पर्याय अपेक्षा भी अंतर नहीं, और बहुत सारी अपेक्षाएं। नए चक्र लिखा ना डॉक्टर साहब का, नए चक्र है परम भाव प्रकाशक नए चक्र, अपने अभय जी ने उसमें नए रहस्य लिखा, उसमें एक नए आता है भाई साहब, एक नए कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्याय आर्थिक नए से संसारी जीव की पर्याय भी सिद्धों की पर्याय के समान नए है। नए द्रव्यार्थिक नए नहीं बोल रहा हूं मैं, पर्यायार्थिक नए बोल रहा हूं। दस प्रकार के द्रव्यार्थिक नए हैं, उसमें भी ये कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए आता है। और छह प्रकार के पर्यायार्थिक नए हैं, उसमें भी ये कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नए आता है। उसका ये उदाहरण दिया द्रव्यार्थिक नए से, तो क्या कहा मालूम? शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से ऐसा कहा कि संसारी जीव भी सिद्ध के समान, माने संसारी का आत्मा वो सिद्धों की आत्मा के समान है द्रव्यार्थिक नए से, उनका द्रव्य और मेरा द्रव्य समान कर्मोपाधि निरपेक्ष से देखो। और यदि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नए से भी देखो तो उनकी संसार, ऐसा उदाहरण में लिखा है वहां पर मूल गाथा में लिखा है, संसारी जीवों की पर्याय भी, पर्याय शब्द का, संसारी जीवों की पर्याय भी सिद्ध जीवों की पर्याय के समान। नए कौन सा लगाया है? नए कौन सा लगाया है? नए लगाया है कर्मोपाधि निरपेक्ष, माने मेरी पर्याय में जो जितनी कर्मोपाधि है वो कर्मोपाधि के कारण मेरी पर्याय आपको अशुद्ध नजर आती है, लेकिन मेरी पर्याय को भी यदि कर्मोपाधि को निकाल करके देखो, निकाल करके देखो कर्मोपाधि को निकाल करके देखो तो मेरी पर्याय, बोलो कर्मोपाधि को निकाल दोगे तो पर्याय कैसी बचेगी, कैसी बचेगी? कर्मोपाधि माने क्या? क्षय की उपाधि, उपशम की उपाधि, उदय की उपाधि, क्षयोपशम की उपाधि, ये चार प्रकार की जो पर्याय रूप उपाधि कही है, ये कर्मोपाधि को निकालो, निकालो, अलग करो। मेरी पर्याय को आप राग देखते हो, मेरी पर्याय में अशुद्धता देखते हो, कर्मोपाधि निकाल करके देखो, कर्मोपाधि को निकाल करके देखो, मेरी पर्याय में जितनी अशुद्धता है वो तो कर्म की उपाधि के निमित्त से है, कर्म के उदय के निमित्त से है, कर्म के उदय को निकालो, वो पर्याय कैसी बचेगी? द्रव्य नहीं, पर्याय द्रव्य नहीं बचेगा, पर्याय के, पर्याय की बात चल रही है। बोले वो पर्याय भी शुद्ध बचेगी, कैसी बचेगी? चार भाव से निरपेक्ष वो जो पर्याय है, मेरी कहो चाहे तुम्हारी कहो चाहे भगवान की कहो चाहे सिद्धों की कहो, इन पर्यायों को कर्मों की उपाधि को निकाल करके देखते हैं तो सब पर्याय सब शुद्ध ही हैं, सब पर्याय शुद्ध है, अशुद्धता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बताओ कहाँ है? अशुद्धता है, अशुद्धता है, अशुद्धता है, कहाँ है? बोले ये देखो ना, ये तुमको राग है, जब कर्म की उपाधि निकाल दी तो अब राग कहाँ से दिख रहा है तुम्हारे को? कर्म की उपाधि जब निकाल दी गई, ये राग तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय जनित है, और कर्म की उपाधि निकाल दी तो चारित्र मोहिनी की उपाधि निकली क्या नहीं निकली? वो निकली तो राग बचा क्या? क्या ये इसमें कमाल है, और विवक्षाओं से हम उस पर विचार कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक ऐसी अंतिम स्टेज आती है, एक अंतिम स्टेज जो नियम सार की अपन ने बात करी है, एक अंतिम स्टेज ऐसी आती है कि द्रवगुण पर्याय का विचार नहीं करोगे तो भेद ज्ञान नहीं होगा। और आचार्य ने रोचन सार में 89 नंबर की गाथा या 91 नंबर की गाथा 80 गाथा से पूरा प्रकरण ही 12 गाथाओं का प्रकरण है, वो पूरी 12 गाथाओं में उन्होंने मोह के नाश की विधि बताई है, और मोह के नाश की विधि को करने के लिए भेद ज्ञान को आवश्यक बताया, भेद ज्ञान को करने के लिए द्रवगुण पर्याय को जानना आवश्यक बताया। इसलिए द्रवगुण पर्याय को जानने से ही भेद ज्ञान होता है, भेद ज्ञान से मोह का अभाव होता है। इसलिए हमको यदि मोह का अभाव करना है तो भेद ज्ञान अवश्य करना चाहिए, भेद ज्ञान करने के लिए द्रवगुण पर्याय को जानना अवश्य चाहिए। लेकिन इस द्रवगुण पर्याय के जानने के, लालचंद भाई की भाषा में द्रवगुण पर्याय के जानने के लोभ में फंस के मत रह जाना द्रवगुण पर्याय के जानने के लोभ में यदि फंस के रह गए तो फिर आपको आत्मानुभूति और भेद ज्ञान की जो सही आप वो जो उसका वास्तविक पक्ष है उसकी हमको प्राप्ति नहीं होगी, और उससे भेद ज्ञान के अभाव में मोह का नाश भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो ये प्रवचन नियम सार की 145 गाथा में जो ये उपदेश दिया गया कि द्रव गुण पज्यानम चित्तम जो कुणई सोवी अन्न वसो, वो भी अन्य वश है। इसलिए द्रव गुण पर्याय का अच्छी तरह से विचार करने के बाद उसका विकल्प तोड़ कर भेद ज्ञान को प्राप्त करके, और एक बात और बताता हूँ कि भेद ज्ञान काय के लिए, काय के लिए मन, भेद ज्ञान के लिए नहीं है। 80 नंबर की गाथा पढ़ो, भेद ज्ञान भी अभेद ज्ञान के लिए है जिस अभेद ज्ञान में द्रव गुण पर्याय का भी भेद नहीं देखा जाता है, ऐसा जो अभेद ज्ञान है उसकी प्राप्ति के लिए ही ये भेद ज्ञान की चर्चा है। इसलिए भेद ज्ञान के माध्यम से हम वास्तविक अभेद ज्ञान को प्राप्त करें, इस पवित्र भावना से अभी की बात विराम।